ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 42 से लेकर के 47 तक अध्याय के अंत तक। बोर्ड में श्लोक संख्या 47 उसी को आवृत्ति करेंगे।
असत् विषयं घृं भावगम्यं प्रपन्नाम् असत् विषयं घृं भावगम्यं प्रपन्नाम् अमृत मरवर्यां नाशयत् सिंधुमन्थ्यम् अमृत ममरवर्यां नाशयन् सिंधुमन्थ्यम् कपटजुवति वेषो मोहयन् यासुरारिन् कपटजुवति वेषो मोहयन् यः सुरारिं स्तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। स्तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि।
शब्दार्थ असत विषयम नास्तिकों के समझ में न आने वाला विषय। अंग्रिम भगवान के चरण कमल। भावगम्यम केवल भक्तों के भाव के द्वारा समझ में आने वाला। प्रपन्ना उन्नत सनातक। अमृतम अमृत। अमर वर्याम केवल देवताओं को। आशयत पीने की आशा से। सिंधु मंथन क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न। कपट जुगति वेशा कपट से तरुणी के रूप में प्रकट होकर। मोहयन मोहित करते हुए। यह सुरारिन जो देवताओं के शत्रुओं को। तम हम मैं उनको। वपसुताना जो भक्तों के काम पूर्ण समस्त इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। न तस्मी उनको प्रणाम करता हूं। तो ये इस अध्याय के अंतिम श्लोक है। इसके पहले लगभग 4 श्लोक से तात्पर्य नहीं है तो श्लोक और अनुवाद पाठ कर लेंगे। कम से कम अनुवाद का पाठ कर लेंगे। श्लोक नंबर 42। आत्मसंभूतां तं मायां भवानीं भगवान भवः स सम्मतां कुसिंख्यानां प्रीत्या चेष्टाय भारत चेष्टास्त भारत। हे भरतवंशी महाराज, तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। श्लोक नंबर 43, शिव जी ने कहा है, देवी अब तुमने भगवान की माया देख ली है, वे अजन्मा ही है, सबके स्वामी है, यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित है। श्लोक नंबर 44, शिव जी ने कहते हैं, जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधन पूरा कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था, अब ये वही परम पुरुष हैं जिनका मैं ध्यान कर रहा था, जिन तक काल ही नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद भी नहीं समझ पाते। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखवाचन इति ते भीतस्तात विक्रम सार्ग बंधन सिंधुर निर्मंथने ये न ध्रुत पुष्टि महाचल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत को धारण कर रहा था, वही सारंग धम्मा नामक भगवान है, मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। श्लोक संख्या 46, जो कोई क्षीर सागर के मंथन की, ये भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के जस का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। अब अंतिम श्लोक है, अच्छा इस श्लोक के उसका अनुवाद है, एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं। तात्पर्य, क्षीर सागर के मंथन संबंधी इस कथा का उपदेश भगवान द्वारा स्पष्टतः वर्णन किया गया है। यद्यपि वे सब पर संभाव रखते हैं किंतु स्वाभाविक स्नेह के कारण वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तिनः प्रिया ये भजन्ति इतमां भक्त्या मैत्रेयतेषु चापि अहम्। मैं न तो किसी से ईर्षा करता हूं, न किसी का पक्षपात करता हूं, मैं तो सबके लिए समान हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उनका मित्र हूं। भगवान का यह पक्षपात स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की प्रभा पक्षपात के कारण नहीं करता, अभी तो प्रेम के आदान प्रदान के कारण करता। बच्चे पिता के स्नेह पर आश्रित रहते हैं और पिता स्नेह से बच्चों का पालन करता है। इसी प्रकार चूंकि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, अतः भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतः वे कहते हैं, कुंती ये पति जाना ही न मैं भक्त प्रणश्यन्ति, हे कुंती पुत्र निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार अठवें स्कंध के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 30 अध्याय का तो अंतिम 4-5 श्लोक हम पाठ किए, लेकिन आप लोग ने तो दैन प्रतिदिन रेगुलरली व्याख्या के सहित विशद भाव से इस अध्याय को पाठ किए, पूरा फल तो आप ही लोग लेंगे, हमको तो आपसे कुछ मिलेगा, सेकंड हैंड कुछ मिल जाए क्योंकि फल क्या है। सुखदेव सुखमणि कहते हैं, जो इस क्षीर सागर मंथन की इस कथा को सुनता है और सुनाता है उनका कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के जस का कीर्तन ही इस भौतिक संसार का समस्त कष्ट को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। आपको साधन भी पता है, वो कर लिए और सुन भी लिए, है ना। तो इस अध्याय में विशेष करके जो वर्णन है भगवान शिव का मोहित हो जाना है ना, भगवान शिव मोहित हो ही गए। खैर यद्यपि उन्होंने क्षीरसागर मंथन में एक बार आकर तो चले गए घर में, वो पाठ नहीं लिए थे, खींचतानी में नहीं थे, बोले आपने करो मुझे को मतलब नहीं, अमृत हम चाहिए, जिसको अमृत चाहिए हो जाए काम करे, हम चाहिए वो नहीं गए थे, अमृत के चक्कर में फंसे नहीं थे उन्होंने, वो पहले से आ गए थे, लेकिन अमृत थोड़ी निकला, वो निकला क्या बीस जहर निकला, और जहर के चक्कर में जिसका अमृत की जरूरत नहीं, जहर की जरूरत उसको है, तो अमृत नहीं चाहिए तो जहर चाहिए मुश्किल। भगवान ने सारे देवता और असुर को साथ में लेकर उनके घर में गए, बोले भैया तुझे अमृत की पड़ी नहीं तो जहर को पड़ी लो। अब जाकर इतने उनके उपासना किए सारे, वो अपने उनका तो घर नहीं, कोई घाट भी नहीं है उनका, वो तो अपने पेड़ के नीचे बैठते हैं, पति पत्नी दोनों गृहस्थी किए अपने बैठते हैं, कुल्लम खुला कोई घर ना है नहीं, दीवार बैठे और देखे कि झुंड के झुंड देवता, झुंड के झुंड असुर भगवान समेत आकर के ऐसे प्रणाम ठोकते गए, ऐसे सम्मानित बातें करते रहे। भगवान शंकर बोले हो क्या गए भाई, बताओ रे क्यों, ये मेरे प्रभु के सामने सब आकर के ऐसे स्तुति प्रणाम ना प्रभु, आप ये मत कीजिए अब संसार नाश हो जाएगा, हलाहल विष निकला, हम तो प्रयास कर रहे थे अमृत के लिए, अमृत तो पता है कब क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अमृत मर रहे हैं, जहर मिलेगा ना क्या, ना कुछ व्यवस्था करो हम मर गए, सारे संसार नाश हो जाएगा, सब देवता असुर प्राणी सब मर जाएंगे, कुछ करो, मतलब क्या कहना चाहते हैं, प्रार्थना किस लिए करते हैं, सुबह सुबह जाकर के समझ आओ ना, किस लिए प्रार्थना करते हैं सर, प्लीज प्लीज किस लिए प्रार्थना करते हैं, किस लिए सर आप थोड़ा जहर पी लीजिए ना, हाँ जहर पी लीजिए सर, किसी को जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कैसा लगेगा, हमारे से बेशरम कोई होगा, किसी को जाकर ऐसी प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या करें जब काम पड़ता है तो बेशरम होना पड़ता है। हाँ तो देवताओं का प्रैक्टिस करने से है तो जाकर के कहे असुरों के साथ में ले गए थे सब, मर रहे थे क्या करे, बोले आप ही कुछ कर सकते हैं, अरे भगवान फिर उनको नहीं पूछ रहे, भगवान बता रहे वही जाकर के, जाकर के तो इतने उनको प्रशंसा सम्मान, इतने उनको प्रणाम स्तुति किए, भगवान बोले सिद्धार्थ चलो ठीक है, तो फिर अपने पत्नी से पूछे, भगवान से बोले देखो मुझे बोले मुझे जहर पी लो, कोई पतिव्रता पत्नी होगा अपने पति को परेशान देगा ताकि जहर पी लो, कोई दे सकता है संभव, लेकिन ये ऐसी पत्नी थी ना, हाँ जाइए बेचारे बड़े तंग है, पी लीजिए सारे जहर, क्यों परेशान दे दिए, क्योंकि उनको पता था, क्या पता था, क्या पता था अपने पति कैसे हैं कौन नहीं पता, पति उनका कौन है ये बोलते हैं 88,000 साल तक ध्यान लगाए थे जिनको, उनके कृपा पात्र है तो जिनके ऊपर उनकी कृपा है ये समुद्र भर जहर पीने से उसे कुछ बाल बका नहीं होगा, वो जानती थी आपके लिए जहर क्या करेगा आपका, तो जाइए कल्याण उनका होगा आपका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, मुझे पता है तो प्लीज बेचारे रो रहे जाइए मां है ना बता सर। तो भगवान ने शंकर ने जाकर के जहर पी लिए, अब जहर पी करके फिर वापस आ गए, फिर अपना प्रोजेक्ट संभाले, भगवान आगे बोले काम खत्म अभी अब करो ना, थैंक यू सर, भगवान ने जहर पी कर कंठ बंद करके अपने कुटिया में रहे, वो अपने जो झगड़ा झटी चला उनका जो जो माल निकला आपस में बहुत उनका मुठभेड़, अंततः अंत में अमृत निकला, धन्वंतरि देव सख्यात अमृत कल से निकले, और निकले तो उसको छीन करके असुर ले गए, उनको तो देखने तक नहीं देवताओं, वो बोले अरे देखो ये कौन सा अन्याय है, हम दोनों मिलकर के किए थे, ये तो सरासरा बोले अरे जा बाटे गुंडे थे वो क्या कर उन बेचारे वो हल्ला करने लगे, भगवान पास देखो हम एक साथ हम काम किए थे कि तो घोर अन्याय, भगवान बोले चुप बैठो चुप से साइलेंट ना सार ले गया, चुप बैठो हल्ला मत कर रो मत,
ना क्या वो इतने साल तक परेशान करके चला गया, बोलते चुप बैठे ना चुप बैठे। देखिए इतने बुरी हालत में सरासर अन्याय करके आपके पूरा परिश्रम के फल को छीन ले, फिर भी भगवान कहते हैं सहन करो चुप बैठे। क्यों? अगर चुप बैठे के मेरे ऊपर भरोसा करके मैं इधर काम करता कैसे कर गए वो तू समझ नहीं सकता, तू जान नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा था। अमृत मंथन का मैं बताया था आपको, भूल गए क्या बताया था भगवान मालूम है? भगवान ने देवताओं को भेजे, बोले जाकर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो ना, उनके साथ शत्रु ना जाकर कॉम्प्रोमाइज करो, वो मानेंगे नहीं। देता हूं आपको एग्रीमेंट करने का प्रपोजल, और प्रपोजल भगवान ने दिए समुद्र मंथन का, अमृत निकालने का प्रपोजल भगवान ने दिए। बोले मान जाएंगे, क्यों? क्योंकि अमृत निकलेगा ना, अमृत का महिमा बता देगा। बोले अमृत वो पी जाएंगे सब, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एक भगवान ने न्याय बताए थे उनको कहानी, उसका कहानी का है अही मुसिक न्याय। अही मतलब सांप, मुसिक मतलब चूहा। सांप और चूहा का एक कथा सुनाई भगवान ने देवताओं को। बोले एक बार की घटना है, एक शिकारी ने एक बिटारी बैठा था जंगल में, और उसमें कुछ बैठा था किसको पकड़ने के लिए जंतु को, लेकिन आकर चूहा फंस गया। चूहा खाने के लिए बिटारी बंद हो गए। चूहा बंद गया, बता चू चू बोलता है क्या करता है। तो सांप निकला था उनके लंच के लिए, उनको तो बनी बनाई किचन तो है नहीं, किसी मिलता है, और उनको प्रयास करके लंच अपना जुगाड़ करना पड़ता है। वो देखा था, देखा चूहा फंसा हुआ, बोला ये बनी बने वो इच्छा है उसको, आज मेरा लंच वही हो जाए। तो जाके चूहा को खाने के लोभ से वो जा करके फंस गया, फंस गया, फंस करके अब क्या करेगा, अब क्या काम, खुद ही फंस गया। अब शिकारी आ गया तो मुझे मरेगा, वो क्यों मरेगा? तो सांप ने एक बुद्धि किया, बोला भाई चूहा, मेरा मुझे भाई बोलता है ना, मरते समझ में हम दोनों भाई भाई हो जाना चाहिए क्या है। बोला भैया चूहा हाथ मिलाओ, हम दोनों फ्रेंड है, फ्रेंडशिप करो। एग्रीमेंट साइन की, फ्रेंडशिप लग, तो कैसे फ्रेंडशिप करेंगे ना, एक दूसरे की मदद करेंगे, दोनों दोनों विपदग्रस्त हैं, तो विपद से बचने के लिए कुछ उपाय, कैसे बचेंगे फंसे दोनों को। अरे देखो भगवान ने तुझे भी कुछ बुद्धि दी है, मुझे भी कुछ बुद्धि दी है, दोनों का अलग अलग शक्ति है ना क्या। देखो तेरे पास होगा जो तीक्ष्ण दंत दिए ना, आप उसको काट कर छेद कर सकता बेटा, तो कर सकता मैं, तो करो, तो बात एग्रीमेंट साइन करो, तू छेद बनाओ, जैसे छेद बन जाएगा ना सबसे पहले मैं निकलूंगा, क्यों ना, साइज में बड़ा हूं, आप तो एक डेढ़ फीट का है, हमने 5 फीट का, तो मैं पहले निकल जाऊं, पहले निकल जाऊं, फिर मैं निकल करके बाहर में गेट पर खड़ा रहूंगा, अगर शिकारी आ भी जाएगा ना ऐसे फुदकार मारेंगे और 2.5 फीट पीछे तो भाग जाएगा, कम से कम एक बार तो डर जाएगा, सेकंड टाइम भले आए तो जैसे डर जाएगा, आपको निकलने में टाइम थोड़ी लगता है, फट से निकल जाऊंगा तुम भाग जाएंगे। सुहा बोला वाह क्या प्लान है, क्या सुपर प्रपोजल, राजी हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गया, और मिस्टर चूहा ने अपना काम में लग गया, लग करके बड़े जल्दी से अपने छेद बना लिया, जैसे छेद बनाया सांप निकल करके बाहर आ गया, बाहर आकर बैठा रहा, शिकारी आ रहा था, शिकारी आने से पहले चूहा को बोला निकलो शिकारी यार, जैसे निकला तो सांप ने चूहा को पकड़ करके, चूहा बोला मित्र क्या ना, मैं कहां जाऊं, लंच तो आप ही हो, अरे यही मित्रता है, यही तो मित्रता है, उन्हीं के द्वारा काम करा के बचा निकला और उसी को खाएगा, यही है मित्र। सांप बन करके, सांप को भी अपना घर नहीं बनाता, जानता ना, सांप को बिल बनाना आता नहीं, बिल सांप बना नहीं सकता, लेकिन बिल में रहता है, कैसे रहता है, चूहा बनाएगा बिल, वो जाएगा उनके घर में जबर दखल घुसेगा, मित्र बनकर घुस करके उसको खा कर घर में जबर दखल कर रहे, क्या प्लान है बताइए, कुछ चिंता क्यों। भागवत में साधुओं को इसी उदाहरण दिया गया, बोले सांप की तरह होते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, जाके दूसरे के मकान में उनके साथ धंधा करके उनको खा करके उनके घर को दखल कर बढ़ जाएंगे। तो भगवान ने इसी प्रकार की युक्ति दे करके उनको भेजे, बोले चिंता मत करो होगा। वो बेचारे ये आशा लेकर एग्रीमेंट करके समझौता करके बड़े मुश्किल से समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला तो छीन कर ले, बड़े दुखी हुए थे कितने साल के परिश्रम से बेकार गए। तो भगवान ने डांट कर चुप बैठ, मैं हूं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, असुर तो अमृत लेकर के इतने खुश थे, अहम पीवम अहम अग्रे अहम अग्रे, बोले मैं पहले पीऊंगा मैं पहले पीऊंगा, आपस में भिड़ साल लगे थे, तो पीने होते मुझे तो पहले जानता नहीं, आपस में झगड़ रहे थे, इतने में ही वो बेचारे रो रहे थे। इतने में भगवान ने पिक्चर में आगे हटात, किसी को समझ में नहीं आया, इतने सुंदरी रूपवती युवती बन गए, बन करके उसी की ओर चले, असल कुछ उनके ओर अश्रुओं का नजर उनके ऊपर पड़ा। बोले ये तो डुप्लीकेट अमृत है, ओरिजिनल अमृत तो ये है। उनको कौन पूछे, साइड में रख दिया उसको, अमृत कलश को जो इतने बड़े पोषण में लेकर आए थे उसको साइड में रख दिए। उनको सांप देखने लगे, बुद्धि दृष्टि चित्त सब खो गया। इधर ये संसार इसी से खेल चल रहा है, इसलिए भगवान भी किसी मोहित करने के लिए कौन सा उपाय किए, कपट युवती वेशम, सबको भगाने के लिए, यही एक ही रास्ता भगवान ने उसको फंसाए। इसे कपट में इस एक युवती वेश लिए, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड कसूर थे, बड़ी महाराज के अंदर थे। यस, आप बुद्धि खराब सभी के एक बार बोले कि यही रियल अमृत है, लिविंग अमृत, ये लिक्विड को फिर कौन पूछे। अब आकर के बोले आप कृपा करके आइए, अब आइए आप, अब बिना पूछे, अब उनका नाम क्या है, आईडी क्या है, कुछ परिचय पूछे, कुछ भी नहीं पूछे, आप कृपा करके आइए, हमारे घर यही आए, अपने पास आइए, हम हैं इधर। तो जबकि वो लोग ऐसे इन्वाइट किए, तो कपट युवती वेश में भगवान ने असुरों को बोले, असुरों के हेड डिपार्टमेंट से बैठे थे, उनको बोले देखिए आप लोग वही भारी शिक्षित है, सभ्य है, पढ़े लिखे, लेकिन इतना वो पता है कोई एक तो स्त्री फिर युवती अवस्था में अकेली कोई घूम रहा है बाहर में, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पता तो लगाना चाहिए कहाँ के कैसे है, कौन घरवाल कैसा है। इसीलिए अरे आप ऐसे कपट मत, हमारा बड़ी हम पूरा विश्वास पूछेंगे, क्यों पूछे, हम जानते हैं विशेष कृपा करके हमारे ऊपर आए, उनको तो पूछेंगे आपने देवता, हम आईडी पूछेंगे आपके, इतने मूर्खता हम थोड़ी है, हम हमको पता है कैसे डील करेंगे आपसे, प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे विश्वास, हाँ विश्वास, कोई कसर नहीं छोड़े इतने विश्वास करते, आप जो कहें ना, जो आपस में लड़ झगड़ कर रहे हैं, अमृत बांटने लीजिए ना, आप ही बांट दीजिए, उसमें क्या हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्णता से कुछ ज्यादा विश्वास है आपको, आप लीजिए ना। तुरंत अमृत कलश उनके हाथ में दे दी, आप बंटवारा कर दीजिए, हम बैठ गए, कोई कुछ बोल रहा था गए चुप, देख नहीं रहा सामने खड़े, हम आपस में साइलेंट करके बैठ गए सर। आप जो अति वेश में भगवान ने बोले अच्छा देखिए पुराना होंगे नहीं, आप कही आपके बात किसी का मान सकते आप कही ना ऐसा है, अब वो भी जो बैठे बेचारे दुखी होकर लोग रहे, वो भी आपके साथ हमारा साथ में काम की, कोई सब बात नहीं, हम दोनों मिलकर के थे, प्रभु जी का फिर उन्हें लोग लाए थे, लेकिन आप छीन कर ले लिए, आप उन लोग को कौन पूछे जाएंगे, तो जाएंगे ना, ये अच्छा नहीं लगता, बेचारे बड़े दुखी है आपके साथ मिलकर काम किए ना, फिर आप क्या कहना चाहते ना, मैं ये चाहता हूं कि क्यों उनको दुखी करें, ये जो अमृत कलश बहुत दिन का रखा हुआ था फ्रिज में, जो असली अमृत है ना नीचे बैठ जम गया, ऊपर जो लिक्विड पानी पानी है उन थोड़ा दिला दो तो भी खुश होकर जाएंगे, बाकी जो माल है माल तो आपके लिए सारे, हाँ कहना दीदी दी, चले चले तुरंत धोखे करके उनके परमिशन लेकर के उनसे पूछ करके मोहिनी देवी चल पड़े उनके, वो अश्रु तो देख रहे थे अरे सचमुच कलश लेकर के आ गए बिना कोई झगड़ा झाटी में, इतने आसान है, देखिए कितने जटिल अति द्रुह काम को कितने आसान बना दिए भगवान, कितने आसान बना दिए, समस्या खत्म। अब ला करके बोले फटाफट लाइन बनाओ पिलाओ, जो अपना अपना ग्लास कोटिंग सब लेकर बढ़ जाओ। तो भगवान ने सो अगले परिवेशन की एक ही आइटम था, कोई ज्यादा पांच सात आइटम थोड़ी एक ही सर्विस आइटम एक ही था, तो वो लिक्विड था, पतल की जरूरत नहीं, अपना अपना ग्लास कोटिंग जिसका जो घर पर फेलते गए देवता ऐसे देख लेते, पता नहीं इसी धार को बचेगा कि नहीं, इसी धार लाया कुछ सोचा कि कुछ खाली हो जाएगा, मटका खाली करना दे मुझे, वो लेकर गया उनको, विश्वास कर रहा उनको, अब टांग खींच करके बैठे रहे थे बेचारे, तो मन में तो डाउट आ रहा था, बोल नहीं पा रहे थे कि उनको दुख ना लगे। अंततः एक असुर तो बोला भाई भरोसा नहीं मुझे मिलता है, खाली हो जाएगा सारे, राहु था उन्होंने मेकअप किया फटाफट उठ के जाकर ऐसे मेकअप करके देवता बनकर जाकर बढ़ गया। देवता का ड्रेस पहन करके देवता का रूप बना करके गया, लेकिन गड़बड़ी यही हुआ कि जो डुप्लीकेट ब्लैक वेस बनाया डुप्लीकेट वेस तो अंधार में जाना चाहे था है ना, लेकिन दोनों लाइट के बीच में गड़बड़ी गड़बड़ी है, भूल हो गया उनका दोनों लाइट, एक डे लाइट एक नाइट लाइट, उनके बीच में जाकर बैठ गए तो पकड़ा जाएगा बुद्धि खराब हो गया तो अभी चला भगवान ने पहले से बुद्धि खराब रखे, दोनों लाइट के बीच में आकर बैठा पकड़ा गया। यद्यपि अपना ग्लास में अमृत भर के पी भी लिया था, अमृत पी लिया था अपने लिए, लेकिन फल परिणाम क्या मिला उनको, गला कट गया। अमृत लेकर के देवता बनकर के अमृत पी करके गला कटा, क्यों? क्योंकि आपने लिए अमृत पिया। भगवान शंकर ने अमृत नहीं पिया, जहर पी गए, लेकिन दूसरे के कल्याण के लिए पिए थे, इसलिए उनका अभी भी सम्मान होता है, पूजा होता है निरकंठ, लेकिन वो गला कट कर घूम रहा पवन होकर। तो इसलिए परोपकार की कितनी महानता, साथ नहीं था भगवान शंकर के पास। तो ऐसे करके मोहिनी देवी तो पिला दे सबके झगड़ा हटी, जो हुआ वही करे मोहिनी मूर्ति, फिर आपने पावर में आकर के मार से भगा दिया उनको। ये बात जब सुनाई पड़ा भगवान शंकर को, तब ये बात 42 नंबर श्लोक में शिव जी ने कहते हैं, कि तब शिव जी ने प्रसन्न होकर ये बात जो सुने रिपोर्ट अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया। ये भवानी पता है आपको अभी का मैसेज क्या है, करंट मैसेज क्या है? भवानी को बोलते हैं, भवानी कौन है? जो सारे अधिकारियों के द्वारा भगवान विष्णु के शक्ति करके माने जाते हैं ये दुर्गा जी, उनको शंकर ने स्वयं बोले, बोले देखिए क्या बोले शिव जी ने कहा है, देवी आओ तुमने भगवान की माया तो देख ली ना, ये बात तभी कहे, अभी नहीं कहे जब के लिए, तभी कहे कि जब उनको पता चला भगवान शंकर को कि ऐसे घटना हो गया, भगवान ने अद्भुत रूप लिए थे, अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड में अब तक ये रूप नहीं था, ये नया ब्रांड न्यू रूप था उनका अवतार। तो शंकर बोले अरे मैंने देखा, आप सब देख लिए ना, हम देखे थे। तो भगवान ने दौड़े सीधा डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग करके भगवान के पास पहुंचे, जाकर पहुंचे भगवान के पास, घूम वैकुंठ में जाकर बोले सर वो जो अवतार आपका नया था बिल्कुल ब्रांड न्यू, मैंने नहीं इसमें मिस करके देखा, स्पॉट में नहीं था, प्लीज थोड़ा मुझे दिखाना चाहिए, थोड़ा दिखा दीजिए। तो भगवान ने समझा, यदि वो अकेले नहीं गए थे, भगवान किसके साथ गए थे शंकर जी? वायर के साथ गए थे, दोनों गए थे। पत्नी के साथ जाकर के रिक्वेस्ट किए, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ आपके जो न्यू अवतार है उसको थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने समझाया, शंकर जी आप भले आदमी है, आप माता जी साथ में है, आप क्यों देखना चाहते हैं? ना नहीं कोई बात नहीं, हम गृहस्थ हैं, आपको क्या आत्मा, तो ऑलरेडी गृहस्थ हैं, माता जी साथ में हैं, हमको कौन सा चक्कर है ना, तो ब्रह्मचर्य सन्यासी स्त्री हमको देखने थोड़ा रहेगा, हम तो गृहस्थ हैं, माता जी साथ में है, तो डर क्या, आप क्यों, तो प्लीज थोड़ा हमें देख लेना चाहते हैं। भगवान ने मना कर रहे हैं, जिद पकड़े नहीं नहीं प्लीज प्लीज हम देखना चाहते हैं। तो भगवान को इसलिए कहा गया कि जो हमेशा भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहते, पूर्ण करने वाले शिव जी जैसे महान भक्त, उनकी इच्छा किसी पूर्ण नहीं करेंगे। तो उनकी इच्छा पूर्ण करना था, तब तुरंत देखते देखते भगवान ने दोबारा सेकंड टाइम मोहिनी में आरोप मारा। अरे बाप रे बाप, मोहिनी मूर्ति बनकर गेंद खेलते खेलते बॉल खेलते खेलते आ गई। अब शिव जी का तो भूल गए कि मैं कुछ हूं, मैं भी एक गृहस्थ हूं, पत्नी मेरे साथ में, कुछ भी नहीं बुद्धि काम किया, उनके पीछे ऐसे मोहित होकर भागे भागे। वो भी तो देखती होंगी, गाली देती होंगी, कुछ कोई बोले कौन सुनता है, ऐसे शिव जी ने मोहित होकर भागे कि भागे, क्या वर्णन आप लोग से पढ़े होंगे, किस अद्भुत वर्णन है, क्या हो गया शिव जी का हाल। और उसी कॉलोनी के अंदर गए जहां शिव भक्त सब रहते थे सारे शंकर के डिवोटी जहां रहते थे ना, उसी कॉलोनी के बीच में भाग रहे थे शंकर के डिवोटी। वाह हमारे इष्ट देव, ये क्या हो गया, ऐसे भाग रहे, ये कौन है उसके पीछे भाग रहे भाई हमारे प्रभु, हम क्या कोई माया में फंस जाना, कोई लेटर फेटर लिख देना, कोई पकड़ा जाने, लेकिन ये तो साक्षात दिन दहाड़े में दौड़ रहे पीछे, और इस हालत में दौड़ रहे कि वो बोली नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, हालत में दौड़ रहे, और सारे देख करके इसे कर दे क्या। आप पूरे चक्कर घूम करके पूरे सिटी में एक चक्कर लगाए, पूरा हर कॉलोनी में घूमते घामते, प्रोसेशन निकाल के घूम के आग करके पूरे बुद्धि खो गया था इसे पड़े, तब फिर भगवान ने अपना रूप बोले हो गया। तब यहां से बुरी तरह से डिफिटेड हो करके आ करके अपने पत्नी के पास, पत्नी तो सारे खेल देख ली, सिनोपन था सब देख ली, आकर देख करके पत्नी कुछ बोलने से पहले बोलते और देख ली ना, अभी भगवान की माया तो देख ली ना, मुझे क्या हाल कर दिए, यही बोलते शिव जी ने कहा है देवी अब तुमने भगवान को माया तो देख ली ना, ये अजन्मा ही सबके स्वामी है। अब स्त्री बनकर भाग रही थी, यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, यद्यपि मैं उनके गुणावतार हूं, मुख्य अवतार हूं, लेकिन फिर भी मेरा हाल क्या हो देख ली, मैं भी उनकी शक्ति से बुरी तरह से भ्रमित हो गया, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो बेचारे माया से फंसे हैं। जो माया के आश्रय है उनके बारे में क्या कहा जाए, हम लोग के बारे में क्या कहा जाए, बोले मैं मेरे पोजिशन मेरे पोस्ट कहां पर है, मेरा जो ये हाल हो गया और दूसरे को क्या कहा जाए। ये शिव जी ने ये बात कहे कि फिर ये बात कहकर कहते हैं, तुम मन में जो शंका था ना अभी समझ में आया कि मैं इतने लंबा समय किसकी ध्यान कर रहा था, जब मैंने 1000 वर्षों तक जो साधना पूरी कर ली थी तो तुमने मुझे पूछी थी कि मैं किसका ध्यान कर रहा था, आप मैं उन्हीं के ध्यान कर रहा था, समझ लो यही जो मोहिनी मूर्ति लेकर भाग रहे थे उन्हीं प्रभु वही परम पुरुष है जिन तक काल भी पहुंच नहीं सकता, जिनको वेद भी समझ नहीं सकता, उन परम पुरुष को ध्यान कर रहा था, और ध्यान करके करने के बावजूद भी इसे फंस गया। अब बेचारे जो नहीं किए उनका हाल तो क्या बताए, तो इसकी तो कोई समझ नहीं सकता उनके प्रभाव कैसे पराक्रमशाली प्रभावशाली है माया, और ये तो आप देख ही लिए सामने। तो भगवान शंकर ने क्या नहीं जानते थे भगवान के प्रताप को, अच्छी तरह से जानते हैं, उनके एक नंबर के फॉलोअर है, जानते हैं मेरे प्रभु की पावर क्या है, तो क्यों जाकर फिर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे चलो प्राइवेटली है ना, किससे आप मिलना चाहते हैं तो प्राइवेटली छिप कर मिलना चाहते हैं ना, किसी की स्त्री के रूप में मिलना चाहता है, कभी कोई अपने से जो है कोई इसे खुले खुले मार्केट में जाएगी तो नहीं, चुपचाप है ना नहीं। लेकिन वो शिव जी बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ सबके सामने और फिर भागे रहे बिल्कुल सिटी के अंदर कॉलोनी में किसी, ये शिव जी का और एक महानता। भगवान शंकर वैष्णवानाम यथा संभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भक्त होते हैं उनका जो मेन गुण क्या होता है जानते हैं क्या, अमानिता, मान कभी नहीं चाहते, वो डरते हैं, सम्मानम घोर अगरणम नीचापमानम सुधा, सम्मान को घोर विष करके मानेंगे और नीच अपमान को अमृत करके मानेंगे, उनके लिए यह अमृत है, कोई उनको अपदस्त कर दे कंडन कर दे अपमानित कर दे उनको नीचे दिखा दे वो अमृत के जैसा मानेंगे उनको, तो कोई उनको खूब पूजा स्तुति सम्मान कर दे बोले ये जहर पिला रहा है ऐसी माने। तो भगवान शंकर उसी दिन का बदला लेना चाहते थे जिस दिन आपने स्वयं प्रभु समुच्चय देवता और असुर समाज को लेकर के खूब उनको प्रणाम स्तुति किए थे, बोले ये क्या मेरे बदनाम करा रहे हैं, सबके लगाकर आप ही खुद मुझे आकर पूजा कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुना। उस दिन इतने उनको सम्मान किए, भगवान शंकर तो बोले ठीक है मैं भी मौका लू, उसका बदला तो मुझे चुकाना होगा, मुझे इतने अपदस्त कर दिए सम्मानित करके पूजा करके, उसका बदला मैं मिलूंगा। तो बैठ के विचार कर रहे थे कब इसका चुकाऊंगा, इतने मुझे कर चुके सबका सामने। और जब भगवान को पूजा किए, जो जितने सैयाइट से जो सिख भक्त थे सभी के सामने बोले देखा, मीडिया मन का स्टेटमेंट निकाल, देखा तुम्हारे भगवान है, सारे भगवान के फले और देवता भी है, सारे सारे जाकर साथ 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 किए ना हमारे संगत के सामने, कौन है हम सभी शिव भक्त तो उनको ऐसे ही। तो भगवान शंकर ने बोले ये भी बुद्धू मुझे भी ऐसे समझने लगे, वो भी मुझे समझ नहीं पा रहे कौन क्या है, तो उनका तो कभी निराकरण करना होगा, बदला लेना होगा। तो इसलिए भगवान को जब पता चला भगवान शंकर को कि भगवान ने मोहिनी रूप लिया, बोले वो दिशिति को लेना ये चांस, तब दौड़े जा करके भगवान प्रार्थना किए, बोले प्लीज। भगवान मना कर रहे थे, समझा मत देखना चाहिए, लेकिन जब भगवान ने समझे कि शिव जी का अंतरतम इच्छा क्या है, वो एक्चुअली आपने जो बदला चुकाने के लिए चाहते हैं तो बिल्कुल इसी शिव कॉलोनी के अंदर लेकर जाएंगे मुझे, क्योंकि सबको दिखाएंगे कि ये जो आप सोच रहे थे मैं बड़ा हूं, ये स्वप्न में भूल जाइए, कौन क्या है अभी समझ लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दो उनको। तो इसीलिए उन्होंने मोहिनी मूर्ति को पीछे इस प्रकार उलग्न होकर भागने लगे, और अपने भक्तों के निवास के सामने कोई गली कोई गली में भागे, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन महान है, कौन मालिक है, कौन दास है, इसका अवकात ये दिखाकर खुश हो गए। आकर हुए अपनी पत्नी को बोलते हैं देवी अब देखिएगा, उस दिन आपको खूब लगा होगा हे हमारे स्वामी कितने महान कितने बड़े हैं, ये तो भगवान विष्णु तक सारे आकर के उनको हाथ जोड़ते हैं, अभी समझ गया मेरा अवकाश कितना है, अब देख लिया समझ गया ना। तो ये समझाना चाहते हैं सब। तो ये जो भाव, ये कोई साधारण मोहित माया मोहित पुरुष का नहीं होगा, जो बिल्कुल विष्णु माया को पार कर चुके हैं, भगवान की पूर्ण कृपा के आश्रय कर चुके, उनके इस प्रकार विचार आएगा, जान बुझ करके भगवान भगवान के सामने हार जाना अरे यही तो जीत है। जीत किसको कहते हैं, भगवान से हार जाना ही वास्तविक जीत है। मैं हारा तो हारा, किससे हारा, उनसे। तो ये देखना चाहिए, ये भगवान शंकर के महान बड़पन है, उनके सर्वश्रेष्ठ वैष्णवता के ही परिचय है। तो इसको कहते हैं, इस विषय के अंत में इसलिए कहते हैं कि कौन उनको समझ पाएगा जो हठात एक तरुण स्त्री के रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिए, उनको बहका दिए। भगवान को पता था, किसी को समझ में नहीं आया किस स्थल पर क्या किया जाए, लेकिन भगवान की बुद्धि इतने इमीडिएट इस स्टेप पर क्या करना चाहिए वो कर डाले, करके करा दे, उनके सामने बैठे बैठे चुपचाप अमृत पीकर चलते जाए, एक ड्रॉप उनको नहीं दी, और तुरंत मारपीट झगड़ करके उनको भगा दिया। जिन मोहिनी रूप दिखाकर उन्होंने मोहित किए थे उन्हीं को उनकी मारे, वो असुरों को बेचारे विश्वास किए थे, विश्वासघातकता नहीं, लेकिन भगवान जो भी करेंगे वो सब सही है। बलि को सरासर चीटिंग किए, वो यहां भी बलि को चीटिंग के बेचारे एक रूप दिखाकर फंसाए और दूसरे मार के भगा दिए। तो करते रहते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि अपने भक्तों को हमेशा साथ देते हैं। असुर लोग बोलेंगे नहीं ये पार्शियलिटी की, हमेशा ही करते रहते हैं पार्शियलिटी की। तो प्रभुपाद जी ने एक युक्ति देते हैं, बोलते हैं पार्शियलिटी नहीं है, जबकि भगवान बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु न मिद्वेषस्ति न प्रियः, मेरा सबके प्रति समान भाव है, कोई मेरे शत्रु कोई मेरे मित्र नहीं है, लेकिन ये भजंती तवां भक्त्या मैत्र तेषु चापि अहम्, मेरा जो भक्ति भजन करते हैं। और यहाँ क्योंकि एक रूल होता है आप सब जानते हैं, जनरल गवर्नमेंट का सरकारी नियम होता है, रूल होता है, कोर्ट कचहरी में नियम चलता है, आपका कोई केस हुआ तो आप जाएंगे कोर्ट में वकील लेकर के जज के सामने योर ऑनर ऐसे ऐसे बताएंगे, तो वहां जो बातचीत होगा वहां पर जो सिस्टम है वो अपना घर में थोड़ी चलेगा, वहां जाके योर ऑनर कहें, घर में योर ऑनर कहेंगे नहीं, कह सकते, ये नहीं चलेगा। तो घर में परिवार के साथ ये रूल जनरल में, ये पब्लिक प्राइवेट रूल है, यहां थोड़ी यहां ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे संडन, नहीं घर में थोड़ी, घर तो लुंगी पहनकर कम से पहनकर घूमना है, यहां तो अपनी बात है, अपने घर की बात। तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों के साथ अपने घर की भी लिंग है, ये ऑफिशियल लिंग नहीं है, बाकी जो जनरल पब्लिक के साथ ऑफिशियल लिंग है, ये सबके लिए समान हो, मैं किसी के साथ शत्रु मित्र नहीं कुछ, लेकिन अपने घर में थोड़ी ऐसा करूंगा, घर में अपना घर है, वो तो मेरे है, वो मेरे है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने संतान के प्रति लगाव रखता है, उनको टेक केयर करता है, उनको मिठाई खिलाता है, तो कोई बोलेगा अरे देखो हमेशा उनके बेटों के लिए करता है, अरे ये कोई पक्की बात है, अपने बेटों के लिए करेगा आपके आपके लिए करेगा, क्यों उनके बेटे लेकर, क्यों उनके बेटों के कोई पर उन्हीं के ऊपर पूर्ण भरोसा किए हैं, उनके संतान का और कोई सहारा नहीं है, केवल वही सहारा है, उन बेचारे उन्हीं के मुंह देखकर पड़े हैं, हमारे पापा है वही मुझे खिलाएगा पिलाएगा कुछ भी करेंगे, तो उनके साथ करेंगे नहीं और किसके साथ करेंगे, बाकी लोगों तो दुनिया प्रकार एजेंसी। तो इसलिए भक्त जो है उनका पास कोई और शरण नहीं है, एकमात्र भरोसा भगवान है, तो भगवान भी उनको एकमात्र अपना कर्तव्य मानते हैं, जो मुझे ही केवल माना तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, इस प्रकार उनके साथ डीलिंग है। लेकिन जो का नहीं वो भी है, आप भी है, इधर भी इधर भी इधर सब बोल रहे हैं ठीक, आपके लिए जनरल रूल है, लेकिन प्राइवेट रूल जो केवल मैं उनका वो मेरे, ये भाव तो भक्तों के साथ है। तो इसलिए देवता लोग उनके भक्त थे, डांटो चुप बैठो तुम मेरे हो ना, मेरे बात मानते हो, तुम्हारा काम मैं कर ही डालूंगा, और कर डाले, कैसे कर डाले बोले कपट युवती वेश, भगवान थोड़ी युवती थोड़ी है, सारे वेद साहित्य परिषद उनको क्या बोलते हैं पुरुष, भगवान गीता में ही कहते हैं यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। कोई महापंडित व्यक्ति अगर ये केवल जान ले कि मैं ही उत्तम पुरुष हूं तो सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वविद पुरुष करके सभी जानते हैं, लेकिन वो स्त्री कैसे बनेंगे, कैसे बने बोले ये तो कपट है, ये तो चीटिंग कर ली, वही हो ही नहीं सकता, काम निकालने के लिए कपट बेस मेकअप कर लिए, और वो मेकअप भी ऐसा था, बड़े बड़े एडवांस्ड हाईटेक, और सब लोग फंस गए, अरे भगवान शंकर ही फंस गए, दूसरे की बात कर, यही है विष्णु महाराज, कोई नहीं उसको पार पा सके, कोई नहीं पार पा सके, भगवान स्वयं बोले मम माया दृत्तया अनचैलेंज्ड, कोई नहीं बोल सकता मैं पार पा दूं, तो फिर मामे वही प्रपद्यंते माया में काम करते, जो कोई मेरा शरण में आ जाए तो मेरी कृपा से मेरी माया उसको छोड़ दे अलग बात है, लेकिन इसे कोई मेरे माया को तक हो ही नहीं सकता, बस इस बात को भगवान शंकर यहां स्वीकार करते हैं, श्री सुखदेव जी स्वीकार करते हैं, सारे ऋषि मुनि ऋषि मुनियों के मुख्य ये सभी मानते हैं हे प्रभु आपके माया अपरंपार है। तो बोले इतना ही भगवान स्वयं भी गीता में कहते हैं नाम विदुः सुरगणः प्रभवन्तः मा महर्षयः, नाम विदुः ना तो मुझे कोई जानते हैं, कौन जानते हैं सुरगणः देवता लोग को नहीं जानते, प्रभवन्ति मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं कौन, ना महर्षयः बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं जानते, तो क्या जानोगे, कोई नहीं जानते मुझे, जाना नहीं जा सकता ना। तो इसे अगम्य अगाध गुण वाले अनंत भगवान वो किसी भी समय में किसी मुहूर्त में क्या कर देंगे, कैसे काम निकालेंगे, तो उनको पार्शियलिटी की दोषी नहीं लगा जा सकता, क्यों इसे कर दे उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो उनको सरेंडर किए थे, उनके शरण में थे, तो इसलिए उनको बचाने के लिए कितने भी कपट करना पड़े भगवान पीछे नहीं हटेंगे, कपट करने के लिए डुप्लीकेट चीटिंग करना पड़े तो करेंगे, आप अगर उनको सरेंडर किए यहां कोई नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए अगर इतने आसान तरीका है भक्ति बड़े सिंपल है, अगर आप सचमुच भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे भक्ति करेंगे तो आपके लिए जरूरत पड़े तो सरासर बीच बाजार में रेड हंड्रेड चिटिंग कर लेंगे भगवान आपको बचाने के लिए, कुछ भी करना पड़े कर लेंगे, यहां तक भी कपट युवती वेशम ये भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो करके देखा, बोले मैं करके देखा, ये भगवान का रिकॉर्ड, बोले देखो मेरे रिकॉर्ड पिछले मैं किया हूं, ऐसे ऐसे किया हूं, तो फिर आप क्यों डरता है, आपके लिए भी कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एक ही आवश्यकता शर्त एक ही है, बस अब तुम मेरे शरणागत हो। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकं शरणं व्रज, तो मेरा अकेले शरण में आ जाओ, तो फिर डरता क्यों है, क्यों सोचो, हम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य इसामी मा सुच, डोंट वरी, आई एम देयर गिविंग गारंटी, मैं पर्सनली हम तम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे, अरे सारे पाप जो अभी का है जो पहले का था सब कुछ मिटियामेट कर दूंगा, कोई डरने के बाद नहीं, इतनी बड़ी गारंटेड बात कौन दे सकता, कोई ऑफिस कचहरी देता कोई इतनी बड़ी गारंटी देता है, कोई नहीं दे सकता ऐसा वचन, ऐसा वचन तो केवल शरणम शरण्यम उन्हीं से, वही केवल बोल सकते हैं, उन्हीं के जुहा से ऐसे वचन निकल सकता है, बाकी कोई नहीं है ऐसा बोल सकता, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग है इसे शक्तिशाली वचन के परी भरोसा नहीं, उनको मानते नहीं, थर्ड क्लास लोगों के शरण में जाते हैं सार 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 करते हैं। अगर सार सार करना है, अगर किससे हेल्प लेना है, अगर किससे मथा बचना है, तो ये कंपनी में जाओ, इस काम कृष्ण कॉन्शियसनेस कंपनी है, हर प्रकार की सुविधा इसी में, बाकी कंपनी में कितने बड़े पोस्ट में चले जाओ, आपके जो कंपनी वाले सार सार बोलेंगे, दूसरे को रिक्शा वाले नहीं कहेगा, कहेगा नहीं नहीं, लेकिन इस कंपनी में आ जाओ, अभी नौकरी पक्का भी नहीं हुआ, केवल आ ही जाओ, दूसरे दिन में बड़े बड़े लोग पंडित जी पढ़ा, दूसरे दिन में इतने प्रभावशाली ये कंपनी है और गारंटेड है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए हम व्रत नहीं आते हैं, दूसरे के पीछे चक्कर लगाते, पूरी जिंदगी जवानी खराब करते हैं, पढ़ लिख कर नौकर बनने के लिए, नौकर बनते थे सारे भद्दा जाने में जाते हैं, जहां पे कोई गारंटी नहीं किसी प्रकार की, किसी प्रकार की भरोसा नहीं, और रोते 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 भी प्रयास किए, फिर रोते रोते रहे, ये उपाय क्यों नहीं अपनाते, इसीलिए भागवत में बारम्बार इसी चेतावनी दिया जाता है, अरे मूर्ख, सुखदेव इसलिए यही बात कहते हैं, भगवान शंकर भी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुख्य सभी कहते हैं, और कोई प्रमाण से उसको समझा भी जाते, प्रॉपर एविडेंस के साथ बताते हैं, लेकिन फिर भी इतने मूढ़ प्रति उसको मानता नहीं समझता नहीं, इसलिए बारंबार इसको घोषणा किया जाता है, अभी भी समय है समझ लो, शरण कर लो। हरे कृष्ण। कोई पिछला प्रश्न है?